ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं संतुष्टता सभी गुणों का राजा है और संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का वरदान भी है। आध्यात्मिक जीवन में ये माना जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति यदि संतुष्ट है तो ही वो सफल है। भक्ति में भी इस गुण को बहुत महत्व दिया गया। कबीरदास जो संत हुए उन्होंने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो और सभी धन हो इंसान के पास, लेकिन अगर संतोष धन नहीं है तो और धन भी सब, कैसे कहा उन्होंने, धूरी समान, माना मिट्टी के समान है। वो धन भी धन प्रतीत नहीं होते। व्यक्ति करोड़पति है और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसका करोड़पति होना भी उसे खुशी नहीं देता है, क्योंकि संतुष्टता का संबंध प्रसन्नता के साथ है। जो व्यक्ति संतुष्ट होगा वही प्रसन्न रह सकता है। तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता का आधार क्या बताया है, हम सभी जानते तो हैं। क्या बताया है ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता का आधार है? सर्व प्राप्ति। कहा बाबा ने, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में। सही है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि असंतुष्टता का आधार अप्राप्ति होता है। जब कोई चीज हमें प्राप्त नहीं है तो ही हम असंतुष्ट होते हैं। फिर चाहे वो हमारी छोटी इच्छाएं हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो नाम हो, मान हो, शान हो, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो हमें प्राप्त नहीं हुआ तो असंतुष्ट होते हैं जीवन में। लेकिन बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति है। इसका मतलब ये जितनी भी प्राप्तियां हमने कही ये हम सभी को है। स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंध स्थूल प्राप्तियां हैं। दो प्रकार की प्राप्तियां मानव जीवन में होती हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल में आ गया तन मन धन संबंध, ज्यादा कहेंगे तन धन संबंध, यानी स्वास्थ्य संपत्ति और संबंध। और सूक्ष्म में कहेंगे नाम मान और शान। तो ये सर्व प्राप्तियां बाबा कहता है कि बाबा के बच्चों को बेहद की हैं, हद की नहीं है, बेहद की है। और जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए वो इन प्राप्तियों के आधार से अभी भी चलते हैं और आने वाले 21 जन्मों तक भी चलेंगे। और ना सिर्फ वो स्वयं पर उनकी वंशावली, माना उनकी फिर प्रजा, फिर बाबा कहते हैं उनके भक्त और जो भक्तों की भी वंशावली है वो भी इन प्राप्तियों के आधार से चलते रहेंगे। इतनी बेहद की प्राप्ति है, इतनी अखुट प्राप्ति है। लेकिन फिर भी हम सभी नंबरवार हैं, हम सभी को ये प्राप्तियां बाबा के द्वारा एक जैसी मिली हैं, एक ही समय पर मिली हैं, एक ही विधि से मिली हैं, मिली है नहीं मिली है? कोई कहेगा कि मुझे नहीं मिली है, इसको मिली है, क्या कहेंगे? हम सभी को बाबा के द्वारा जैसे ही ये दिव्य जन्म हुआ, ये सब प्राप्तियां हुई हैं। लेकिन फिर भी संतुष्टता में और उसकी झलक और फलक में नंबर वार है। बाबा कहता है जो सदा संतुष्ट रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी हिसाब किताब आ जाए, उसका सामना करते हुए भी उनकी संतुष्टता और प्रसन्नता कम नहीं होती। बाबा उसको संतुष्ट मणि कहते हैं। तो ऐसी संतुष्ट मणियां ब्राह्मण परिवार में गिनती के हैं। सबको प्राप्ति होते हुए भी सिर्फ बाबा गिनती के क्यों कहता है? तो क्या समझते हैं, सभी संतुष्ट हैं या कभी कभी संतुष्ट हैं, कभी कभी असंतुष्ट भी हो जाते हैं? थोड़े से भाई बहने सभा में बैठे हैं जो समझते हैं हम सदा संतुष्ट हैं, हाथ उठा सकते हैं? अच्छा, कोई कोई तो हाथ उठा रहे हैं और कोई कोई कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट ऐसा कहेंगे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो सदा संतुष्ट, और अगर सदा संतुष्ट हैं तो उसकी निशानी बाबा सुनाते हैं कि वो सदा प्रसन्न होंगे, प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त होंगे। उनके मन में किसी भी बात को लेकर के कभी प्रश्न नहीं उठेंगे, ना बाबा को लेकर के, ना स्वयं को लेकर के, और ना ही ड्रामा को लेकर के। अब कैसे प्रश्न उठते हैं, बाबा ने ड्रामा में मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया? स्वयं के प्रति ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं क्या करूं? ना? फिर दूसरों को लेकर के, इस आत्मा का स्वभाव संस्कार ही ऐसा है। अब ये स्वभाव संस्कार, उस स्वभाव संस्कार को मैं कैसे समाऊं, कैसे सहन कर लूं, कैसे एडजस्ट कर लूं, वो नहीं, लेकिन प्रश्न में आ जाएंगे कि इसका संस्कार ऐसा क्यों है, ये अपने को बदलते क्यों नहीं है, मतलब प्रश्नों में चले गए ना। तो क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में गए, माना प्रश्न चित, फिर प्रसन्न चित नहीं हो सकते, किसी ना किसी बात में नाराज रहेंगे, तो मन खुश नहीं तो मूड ऑफ होगा, उदास हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। और बाबा कहता है जो राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। राजी रहना माना संतुष्ट रहना। तो जो राज को जानते हैं वो राजी रहेंगे। अब ये सब जो कुछ भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, इन सब का राज बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान देकर समझा दिया है। हम बाबा के त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, हैं या नहीं? तो तीनों कालों को समझा है तो मालूम है कि ये क्यों परिस्थितियां सामने आ रही हैं। तो ड्रामा में जो भी पार्ट मुझे मिला है, उस पार्ट में रहते हुए अपनी उन्नति करना, ये संतुष्टता है। किसी भी पार्ट में रहते हुए हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते, ऐसा बाबा ने कभी कहा? बाबा ने कभी कहा कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो संपन्न नहीं बन सकते? कहा कभी? या जो बिजनेस करते हैं या जो नौकरी करते हैं वो संपन्न नहीं बन सकते? केवल जो सेंटर पर रहते हैं वही संपन्न बन सकते हैं? कहां कभी। जो पार्ट मिला है उस पार्ट में रहते हुए उसको निभाते हुए, क्योंकि ड्रामा में हम सब एक्टर हैं और हर एक एक्टर का अपना अपना रोल है। दो एक्टर का रोल एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे पार्ट से संतुष्ट पहले, जो पार्ट मुझे मिला है उस पार्ट में रहते हुए ही मुझे अपनी उन्नति करनी है। तो फिर स्वयं का जो भी पार्ट है, फिर जो भी आत्मा मेरे सामने हिसाब किताब चुकतू करने वाली आती है, कोई ना कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली आती ही रहती है हमारे सामने। या फिर प्रकृति का वायुमंडल कई बार कैसा भी होता है, प्रकृति के तत्व हमसे पेपर लेते हैं, वो भी हो सकता है। कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत ठंडी होती है, कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती, पानी की कमी हो जाती है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, सुनते हैं ना रोज क्लास में कि पानी को कैसे यूज करना है। पानी अमृत की तरह है अभी, तो पानी की कमी हो गई, कभी बाढ़ आ गई, तो प्रकृति के तत्व भी पेपर लेते हैं। तो प्रकृति का भी वायुमंडल कैसा भी है, तो हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट और प्रसन्न, तब जब ये सारे राज हमने समझे हैं ड्रामा के, हम रह सकते हैं। और बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता और पर्सनालिटी है प्रसन्नता। तो बहुत अपने ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी को हमें यूज करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है कि ये कितने संतुष्ट और प्रसन्नचित आत्माएं हैं। जो भी हमारे संपर्क में आए वो ऐसा महसूस करे, और जो खुश होते हैं उनको देख करके ही लोग अपने आप पूछते हैं, क्या बात है आप बहुत खुश रहते हो। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुश रहना, है या नहीं? तो अब जो बेहद की प्राप्तियां बाबा ने हमें दी, वो बाबा हमें किस तरह से समझाते हैं। तो बाबा ने कहा आप सब तन से तंदुरुस्त हो। अब तन से तंदुरुस्त होने का अर्थ बाबा कहता है कि ये प्रकृति का बना हुआ शरीर है, तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ शरीर है। तो वर्तमान समय ये हो सकता है कि तन की कोई बीमारी आ जाए, आ सकती है, आती भी है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है, वो तो आत्मा को चुकतू करना ही है। लेकिन तन की बीमारी होते हुए भी आत्मा सदा स्वस्थ है, और अगर आत्मा स्वस्थ है यानी मन स्वस्थ है, मन आत्मा में है, तो फिर हम बीमारी कॉन्शियस नहीं होते, बीमारी का बार बार चिंतन मन में नहीं चलाते, ये क्यों आ गई, ये कैसे आ गई, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, हाँ फिर प्रश्नों में नहीं जाते। लेकिन उस बीमारी का बाबा कहता है दवा और दुआ से उसको सूली से कांटा बना देते हैं। अगर हम बीमारी कॉन्शियस नहीं हैं, तो फिर बाबा से हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। और यदि हमारा योग बल है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में बाबा को याद करते हैं, वो पावर हमें मिलती है, वो बाबा की दुआ, और जो भी उस बीमारी की दवा है वो हम लेते हैं, तो सहज ही हमारे वो कर्म भोग के हिसाब किताब कर्म योग से चुक्त हो जाते हैं, यानी वो सूली से कांटा हो जाती है। फिर आज की जो 70% बीमारियां हैं वो टेंशन से होती हैं, सुनते हैं सभी। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा कहता है आप बेफिक्र बादशाह हो, हैं बेफिक्र बादशाह, क्योंकि हमारे सारे फिक्र किसने ले लिए हैं, बाबा ने ले लिए हैं, हम अपनी बोझ सब बाबा को दे सकते हैं, अपनी सब चिंताएं उसको सौंप सकते हैं, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है? तेरा, माना बाबा का है। और जैसे ही हमने मेरे को तेरा कहा, यहां तक बाबा कहता है, जैसे हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन भी मेरा नहीं, बाबा की अमानत है, और इस तन के भी हम ट्रस्टी हैं। तो अगर ये भी हम कहते हैं कि ये तन का जो भी हिसाब किताब है वो भी बाबा जाने, तो आप देखो कोई ना कोई ऐसा इलाज या कोई ना कोई ऐसी आत्मा आपके लिए निमित्त बन जाएगी जो सहज ही आपका हिसाब किताब चुकतु करा देगी, क्योंकि हमने किसके ऊपर छोड़ दिया? बाबा के ऊपर छोड़ा। तो इसीलिए जो आने वाले 21 जन्म है तब तो स्वस्थ और सुंदर तन प्राप्त होना ही है, दीर्घायु होगी, रोग मुक्त होंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, वो तो अविनाशी प्राप्ति है ही है। लेकिन वर्तमान में भी, इस जन्म में भी बाबा ने हमें ये विधि बताई है कि तन का हिसाब किताब कैसे सहज चुकतू कर हम संतुष्ट रह सकते हैं। फिर जहां तक धन की बात आती है, ज्यादा जो हमारे को असंतुष्टता होती है जीवन में, मनुष्यों के जीवन में, वो इसी चीज को लेकर के होती है, क्योंकि हम स्थूल संपत्ति की तुलना दूसरों की संपत्ति के साथ करते रहते हैं, और जहां व्यक्ति तुलना करता है और उसे ये महसूस होता है कि मेरे पास कम है, वहां वो असंतुष्ट हो जाता है ना, इसका मकान बड़ा है मेरा मकान छोटा है, इसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है, या इसके पास, सोचते हैं इसके पास ये मॉडल का मोबाइल है मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल नहीं है, या बहनों की बात करें तो इसके पास इतने गहने अच्छे हैं मेरे पास गहने नहीं है। बीके बनने के बाद चलो गहनों से तो बुद्धि निकल जाती है, लेकिन लौकिक वालों में ये तुलना करते रहते हैं अपनी हर संपत्ति की, कि दूसरे के पास कितना है और मेरे पास कितना कम है, फिर इच्छाएं शुरू हो जाती हैं, ये मेरे पास होना चाहिए, इतना धन मेरे पास होना चाहिए। तो कहते हैं आज भाग दौड़ की जिंदगी है इंसान की, और सब भाग रहे हैं विनाशी धन संपत्ति के पीछे, कि अधिक से अधिक हमारी धन संपत्ति हो, और कमा भी लेते हैं तो भी खुश नहीं है, क्योंकि वो धन संपत्ति अपने साथ चिंता भी ले आती है, और इस तरह का वो धन कमाते हैं, गलत तरीकों से धन कमाते हैं, तो जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है उसका टेंशन अपना ही होता है कि इसको गवर्नमेंट से कैसे बचाएं हम, इसको हम चोरों से कैसे बचाएं। लेकिन बाबा के बच्चों को उस तरह के विनाशी धन की प्राप्ति की जो भाग दौड़ है वो नहीं रहती, क्योंकि हमें अविनाशी धन का महत्व समझ में आ जाता है कि अविनाशी खजानों का क्या महत्व है, और हमें अविनाशी खजाने जो प्राप्त हुए हैं, ज्ञान रत्नों के खजाने जिसे बाबा कहता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो केवल अभी ही नहीं लेकिन भविष्य 21 जन्मों के लिए हम पद्मा पदम पति बन जाते हैं। अभी भी बाबा कहता है कि बाबा की श्रीमत प्रमाण आप कदम उठाते हैं तो हर कदम में पद्मों की कमाई आप कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जो एक कदम उठाए और पद्म कमा ले। एक कदम उठाए तो लाख कमा सकता है, फिर भी माना एक सेकंड में एक मिनट में लाखों की कमाई कर सकता है, ऐसे बिजनेसमैन हैं कोई कोई इस दुनिया में, लेकिन पद्म कमा ले ऐसे बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन हम साधारण से दिखने वाले बाबा के बच्चे, अब देखने में कोई कहेगा इस सभा में जो बैठे हैं, साधारण माताएं बैठी हैं, साधारण हम भाई बैठे हैं, तो लेकिन कितनी कमाई कर सकते हैं अगर हम चाहें तो? एक कदम उठा करके पद्मों की कमाई हम जमा करते हैं। तभी तो इस छोटे से संगम युग में हम जन्म जन्मांतर की कमाई जमा कर लेते हैं। तो अभी हमें अविनाशी कमाई का महत्व मालूम है, और जो भी विनाशी भी हमारी आवश्यकताएं हैं वर्तमान की, बाबा कहता है कि जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनको अभी भी सहज दाल रोटी भगवान की याद की मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो ये यादगार कैसे बना? संगम युग से ही बना कि हम संगम युग में जो हमारी आवश्यकताएं हैं दैनिक जीवन की, वो सहज बाबा पूरी करेगा, उसके लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर दुनिया के लोगों की तरह हम भी इच्छाओं में चले जाएंगे, विनाशी इच्छाओं में जाने लगेंगे, तो बाबा ने कहा कि फिर वो विनाशी इच्छाएं बाबा पूरी करने के लिए बंधा हुआ नहीं है। फिर तो बाबा हमें कहता है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हमारी होनी चाहिए, हद की इच्छाओं के पीछे नहीं जाना है, बेहद की प्राप्ति के स्मृति स्वरूप रहना है कि बाबा ने हमें कितनी बेहद की प्राप्तियां कराई हैं। तो केवल दिमाग में उसको याद नहीं रखना है, लेकिन दिल से उसे महसूस करना है कि हम बाबा की बेहद की प्राप्ति करने वाले बच्चे हैं। तो ये उसके पीछे हद की छोटी छोटी इच्छाएं क्या हैं? जैसे कहते हैं ना कि सूरज के सामने अगर दीपक जलाओ तो उस दीपक की रोशनी का क्या महत्व है? होता है कोई महत्व? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज है। हाँ, सूरज नहीं है तब दीपक की रोशनी का महत्व होता है। तो अभी भी बाबा ने जब संडे को मुरली चलाई थी, पीछे संडे को, तो बाबा ने कहा कि जो भक्त आत्माएं होती हैं वो भगवान से क्या मांगती हैं? जैसे भिखारी मांगते ना, एक रुपया दे दो, दो रुपया दे दो। एक भिखारी कभी नहीं कहेगा कि मुझे 1000 रुपया दे दो, है ना? क्योंकि मांगना माना उसको पता है कि अल्पकाल की थोड़ी सी ही प्राप्ति हमें कराई जा सकती है। बेहद की प्राप्ति क्या होती है उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। तो हम बाबा के बच्चे क्या हैं? सारे सागर को हप करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, चिड़ियाओं ने सारे सागर को हप कर लिया। तो सूर्य के सामने अगर मुंह होता है तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है, लेकिन अगर आप इच्छाओं के पीछे जाते हैं, यानी सूर्य से मुख मोड़ देते हैं, तो कितना भी परछाई को पकड़ने की कोशिश करो वो पकड़ में नहीं आएगी। तो इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही है कि जितना इच्छाओं के पीछे जाएंगे उतना वो हमसे दूर होती जाएगी। इसीलिए कहा कि एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं और जागृत हो जाएंगी। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं हद के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। और बाकी सभी ब्राह्मणों का अनुभव है कि हमारी आवश्यकता जो होती है, हमारा संकल्प भी उठेगा उसके पहले, वो कैसे पूरी हो जाती है हम ही नहीं समझ पाते। ऐसा हमारा भी बहुत बहुत बार का अनुभव है, और उससे अधिक हमें चाहिए नहीं, उससे अधिक का हमें इच्छा रखनी नहीं है। तभी हम जो हमारी आने वाली भक्त आत्माएं हैं उनकी हम इच्छा पूरी कर सकेंगे। कई बार बाबा कहते हैं, कई भाई बहने सोचते हैं कि बाबा हमारी लॉटरी निकल जाए, तो हमारी लॉटरी निकल जाएगी तो हम उसे ईश्वरीय सेवा में सफल कर देंगे। अब इतना धन हमारे पास नहीं है जितना धन हम सेवा में लगाना चाहते हैं, तो फिर लॉटरी से निकला हुआ धन हम सेवा में लगा देंगे। तो बाबा कहता है ऐसा धन बाबा की सेवा में नहीं लगता है। और मानो आप करोड़पति हो जाते हो तो फिर माया भी आ जाती है। अगर आप लाखपति तो आजकल गरीब ही माने जाते हैं, लखपति तो अमीर माने नहीं जाते, लेकिन जो करोड़पति और आगे भी जो पति होते हैं वो साहूकार बाबा को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो आज के अल्पकाल के सुखों में ही व्यस्त हैं। हम बाबा के पास आए क्योंकि बाबा गरीब निवास हैं, और ये संगम युग पर हमारा भाग्य है कि हम गरीब बाबा के बच्चे बने और भगवान को हमने पहचाना और भगवान की गोद में हम आए, उसकी हम ईश्वरीय संतान बने हैं। तो इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में आपको बाबा करोड़पति बनाने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आता है संबंध। जब हम संबंधों की बात करते हैं तो हम संबंधों में असंतुष्ट तब होते हैं जब कोई ना कोई संबंध की अप्राप्ति होती है। मानो किसी को माँ नहीं होती, किसी को पिता नहीं होता, किसी को भाई नहीं होता, किसी को बहन नहीं होती, तो फिर सोचते हैं काश हाँ मेरी माँ होती, तो फिर मेरी माँ का प्यार जो है वो मुझे अनुभव होता, क्योंकि माँ जैसा प्यार तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो बाबा ने इसीलिए सर्व संबंधों का अनुभव हमें कराया है, और बहुत समीपता से हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। वो हमारा माता भी है, पिता भी है, वो हमारा मित्र भी है, वो हमारा साथी भी है, जो संबंध हम जोड़ना चाहें, फ्रेंड भी है। कईयों को पिता का संबंध पसंद नहीं होता, फ्रेंड का संबंध पसंद होता है, तो फ्रेंड के संबंध से बाबा को याद करो। जो दिल की बातें करनी है वो बाबा के साथ हम करें, पर जो हमारे संबंध होते हैं लौकिक अलौकिक परिवार जो हमारा है उनसे कई बार हमारी परीक्षा होती है। जो कहा कि स्वभाव संस्कार के पेपर जब आते हैं हमारे सामने, उनके द्वारा ही परिस्थितियां आती है हमारे सामने। कोई हमारी इंसल्ट कर देता है या कोई हमारी ग्लानी कर देता है तो भी क्या हम संतुष्ट रह सकते हैं? कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है सामने सामने, या सामने ही सामने मेरी ग्लानी कर रहा है, तो संतुष्ट रह सकते हैं? क्या कहेंगे? तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा कि वो आत्मा मुझे स्मृति दिला रही है कि मैं तो परवश हूं, क्योंकि जो माया के वश हैं वही ऐसा करेगा। मैं तो परवश हूं लेकिन आप तो शांति देवा हो, शांति देवी हो या मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हमारा फर्ज होता है उस समय उन पर रहम करना, उनके प्रति शुभ भावना रखना। यही बाबा की श्रीमत है। तो जो बाबा ने कहा है वो हमें करना है। तो ये जो पेपर आते हैं परिवार के द्वारा, ये पेपर फिर हमें पेपर नहीं लगेंगे, हम उन्हें सहज पार कर सकते हैं और अपनी प्रसन्नता से उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फिर भी संतुष्ट हैं तभी हम उनमें परिवर्तन ला पाएंगे। अगर उनमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता भी है तो वो सीखेंगे किससे? हमारा ऐसा व्यवहार जब उनको मिलेगा उससे उनको प्रेरणा मिलेगी कि देखो हमने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी इनके उसमें तो हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। इन्होंने तो फिर भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार किया, हमारे साथ ज्ञान युक्त व्यवहार किया, ऐसे ही कहेंगे। अगर हम भी उनके जैसे हो जाते हैं तो फिर हम अपना हिसाब किताब बढ़ा लेते हैं, फिर वो एक चक्रव्यूह जैसा हो जाता है, हमने किया उन्होंने किया और वो बात बढ़ती जाती है और कई बार वो परिस्थिति बहुत बड़ा रूप ले लेती है। फिर अभिमान अपमान में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं अहम का टकराव जो है वो फिर दोनों को ही एक दूसरे से बहुत दूर करने लगता है। ये स्थिति भी संबंधों में फिर पैदा हो जाती है। लेकिन यदि हम संतुष्ट रहे उस समय, उसके राज को समझा कि ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है। कोई भी हो सकता है, कोई गुस्सा कर सकता है हमारे ऊपर, जैसे कहा कि किसी ने अपमान किया या किसी ने हमसे झूठ बोला, किसी ने हमसे धोखा किया, ऐसी कोई भी स्थिति किसी आत्मा के द्वारा हिसाब किताब के रूप में हमारे सामने आ सकती है। फिर सूक्ष्म प्राप्तियों में नाम मान शान की बात आती है, तो हर इंसान चाहता है अपने जीवन में कि मेरा नाम लिया जाए। अगर हम कोई सेवा करते हैं, कोई विशेष कार्य करते हैं, कई बार कई भाई बहने सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना मदद करते हैं, लेकिन किसी भी बात में मेरा नाम नहीं लिया जाता है, करते हम हैं, नाम दूसरे का आ जाता है। ऐसे कईयों को अंदर अंदर संकल्प चल सकते हैं। तो बाबा हमें ये याद दिलाता है कि ये भी हद के नाम के पीछे जाना है अगर हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमें तो बेहद का नाम प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? स्वयं भगवान हमारा नाम जपता है। हम सब किसके दिल पर हैं? कौन हमारी माला जपता है? दुनिया में भक्त भगवान के नाम की माला जपते हैं, जपते हैं ना, वो राम 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 वाली जो माला होती है, 108 की माला, और भी मालाएं होती हैं, तो भक्त भगवान के नाम की माला जपते हैं। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो बाबा क्या कहता है? बच्चे मेरे दिल में हैं, दिल में समाए हैं, और मैं बच्चों को याद करता हूँ। याद से याद मिलती है। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा हमें याद करते हैं, तो हमारा नाम भगवान के दिल पर है। और बाबा ने कहा आप सब ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण नाम कितना ऊंचा है कि आज भी जो नामधारी ब्राह्मण है दुनिया में, भी जो नामधारी ब्राह्मण है, माना अब वो सच्चे ब्राह्मण तो नहीं रहे, लेकिन आज भी वो नामधारी ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नाम से अपना शरीर निर्वाह चलाते हैं। माना इतनी कमाई होती है उनको, केवल ब्राह्मण नाम से ही वो कई तरह के ऐसे कार्य करते हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं वो उनके द्वारा कराए जाते हैं और उससे उनकी कमाई होती है। आज भी ब्राह्मणों को ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, तो कितना ऊंचा नाम है, ब्राह्मण नाम ही मिला हुआ तो ऊंचा नाम है ना। और भगवान हमारा नाम लेता है, तो किसी इंसान ने हमारा नाम नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो बेहद के नाम को याद रखना है कि बाबा ने हम सबको वो इतना ऊंचा नाम दिया, और मान जो बाबा ने दिया, भगवान हमें अपने से भी आगे रखते हैं। हम बालक सो मालिक हैं, ऐसे कहते हैं ना बाबा, कि बाबा के बच्चे भी हैं तो मालिक भी हैं, यानी उनके सिर के ताज हैं। भक्ति में हम क्या कहते थे? हम आपके चरणों के दास दासी हैं, ऐसे ही कहते थे ना भक्ति में। लेकिन भगवान ने हमें चरणों के दास दासी से क्या बना दिया? सिर का ताज बना दिया, मस्तक मणि बना दिया। कितना ऊंचा सोमान बाबा ने हमें दिया। भगवान स्वयं परम धाम से आकर के हमें याद, प्यार और नमस्ते रोज देते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब बाबा की नमस्ते हमें नहीं मिलती है। बाबा कहता है मैं आप बच्चों को मेरे से भी डबल पूज्य बनाता हूँ। मेरी तो सिंगल निराकार रूप की पूजा होती है, लेकिन आप बच्चों की डबल पूजा होती है। तो फिर किसी ने मान नहीं दिया, फिर वही बात आ जाती है कि किसी आत्मा के द्वारा हम मान की इच्छा रखते हैं और उसने मान की बजाय हमारी उपेक्षा कर दी, तो फिर हमें फीलिंग आ जाती है। लेकिन क्या याद रखना है? जो स्वमान में रहता है उसे स्वतः ही सम्मान मिलता है, और सम्मान देने से सम्मान मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे आत्माओं के द्वारा मान मिले, शिव बाबा ने तो हमें इतना ऊंचा मान दिया है, वो हमारा स्वमान है, उसे सिर्फ हमें स्वीकार करना है। कई बार हम उसे सिर्फ सुनकर खुश होते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। जैसे कहा ना कि बाबा ने हमें वो स्मृतियां दी हैं, बेहद की प्राप्तियों की स्मृति दिलाई है, लेकिन हम सिर्फ दिमाग से खुश होते हैं लेकिन दिल में उसे याद नहीं रखते, तो फिर हम मान अपमान में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं। लेकिन वो हमने स्मृति में रखा तो फिर भी हम देने वाले दाता होंगे, क्योंकि हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं ना। तो कोई मुझे दे, मुझे कोई प्यार दे तब मैं प्यार दूं, ये हमारा व्यवहार नहीं है। कोई मुझे दे या ना दे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे देना है। हम देवता बनने वाली आत्माएं तो मुझे मान देना है, मुझे प्यार देना है, और हमने दिया वो हमें फिर से मिलने वाला ही है। और ऐसे ही शान बाबा कहता है, आप सब बच्चों की शान भी सबसे ऊंची है, और वो है दिल तख्त नशीन होना। भगवान के दिल तख्त नशीन है, जैसे तख्त पर बैठना, राजाई के तख्त पर बैठना सबसे ऊंचा शान होता है, तो भगवान के दिल तख्त पर बैठना इससे ऊंचा शान और कोई नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया के जो तख्त होते हैं ना, आज की दुनिया के जो तख्त हैं, वो तो बहुत हलचल वाले हैं और उसमें कोई ना कोई टांग खींचता रहता है, खींचता रहता है माना कांटों का ताज है। आज कलयुग का जो ताज है, जो लोगों को मिलता है, वो कांटों का ताज मिलता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में बाबा ने जो हमें ताज दिया है, जो हमें तख्त दिया है, जो हमें तिलक दिया है, वो जो शान हमें प्राप्त हुई है वो अविनाशी है। लेकिन बस हमारी वो उतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन रहें। दुनिया की आत्माएं जितनी भी हैं, वो अगर बाबा के दिल तख्त पर बैठना चाहे तो बैठ सकती हैं, इतना बड़ा दिल तख्त है भगवान का, लेकिन नहीं बैठ पाती हैं। और हम बाबा के सभी बच्चे भी बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि दिल तख्त पर बैठने की शर्त है। कौन बैठ सकता है बाबा के दिल तख्त पर? जो सदा सच्चा है, सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा हमेशा कहता है कि जिसमें सच्चाई सफाई है, शिव बाबा भोला नाथ है और उसे भोले बच्चे पसंद हैं। तो सच्चाई सफाई वाले बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, जिनके अंदर कोई भी झूठ, हेरा फेरी या जैसे भी हम कहें कि चालाकी करना, बेईमानी करना, ऐसे संस्कार नहीं होते, जो सरल सीधे स्वभाव वाले होते हैं। और बाबा के साथ तो विशेष, कोई भी अगर श्रीमत का उल्लंघन हुआ तो हमें तुरंत बाबा को अपना चार्ट देना है। जैसे संडे की मुरली में भी था कि लोग दूसरों के सामने कभी भी अपना सच स्वीकार नहीं करते, उनके सामने तो सिद्ध करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं के सामने जाते ही सारा अपने दिल की बात कह देते हैं कि मैं कामी हूँ, कपटी हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ ऐसा ही हूँ भगवान आपके सामने हूँ। तो भगवान के सामने सच स्वीकार कर लेते हैं, तो बाबा के सामने हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा मैं तेरी हूँ। और अगर कुछ हुआ भी, कोई गलती हुई, तो हमने बाबा को वो सच सच सुना दिया, तो बाबा कहता है आधा वहीं माफ हो जाता है। तो फिर बाबा के दिल तख्त का यानी वो परमात्मा स्नेह हमें अनुभव होता है, ईश्वरीय प्यार का हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। से कहते हैं दिलाराम, जो दिल को आराम देने वाला है। तो आराम शब्द में अलग करेंगे तो आराम, हमने बाबा को याद किया और वो राम आकर के हमारे दिल को आराम दे देता है। और दूसरा बाबा को पसंद है एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा के दिल तख्त नशीन वही बच्चे होते हैं जिनके लिए बाबा ही संसार है, बाबा ही जीवन का आधार है। जो बाबा के सिवाय और किसी का आधार नहीं रखते, हालांकि बाबा निराकार और आकार हैं, लेकिन फिर भी साकार में भी संबंधों का अनुभव वो कराता है। बाबा कहता है जब भक्तों को भी मैं अनुभव कराता हूं तो फिर बच्चे तो मेरे अधिकारी हैं, उनको मैं अनुभव नहीं कराऊंगा। तो सभी को बाबा सर्व संबंधों का अनुभव कराने के लिए खुद ऑफर करते हैं, तो बाबा बंधा हुआ है। जिस समय भी हम जिस संबंध से बाबा को याद करना चाहें, तो बाबा कहते हैं आपने कहा मेरा बाबा और हुजूर हाजिर हैं। लेकिन अगर हम किसी और को भी बीच में, हाँ ठीक है, कभी बाबा और कभी कभी, अब निराकार बाबा की याद तो कहते हैं पारे मिसल है, खिसक जाती है, तो थोड़ा थोड़ा फिर दूसरा आत्माओं का भी आधार लेना पड़ता है। तो जैसे ही हमने किसी और को अपने जीवन का आधार बनाया, बाबा साक्षी हो जाता है और फिर हमें वो अनुभव बाबा के द्वारा जो होना चाहिए नहीं होता है। तो कोई भी परिस्थिति आती है, अगर कोई मुझे मदद चाहिए, कोई मुझे सहारा चाहिए, तो पहले बाबा ही याद आए, बाबा के अलावा कोई आत्मा याद ना आए। आत्मा याद आती है तो फिर उसके साथ हमारा हिसाब किताब बन जाता है। तो जो भी संतुष्ट रहने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं स्वयं को भी प्रिय होती हैं, बाबा को भी प्रिय होती हैं और सर्व परिवार को भी प्रिय होती हैं। और जो आत्माएं संतुष्ट और प्रसन्न रहती हैं, उसकी झलक और फलक ही अलग होती है। बाबा कहते हैं संतुष्टता की झलक और फलक चेहरे से दिखाई देती है, क्योंकि वो प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। और दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो प्राप्ति संपन्न आत्माएं होती हैं, उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे की झलक फलक, वो सब न्यारी होती है। पता चलता है कि ये कोई इस तरह से प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, इन्हें कोई विशेष प्राप्ति हुई है। तो हमारे चेहरे से भी वो नजर आना चाहिए कि हम बाबा से इतने खजाने प्राप्त करने वाली, इतनी अविनाशी प्राप्तियां अनुभव करने वाली आत्माएं हैं। और जो प्रसन्न है उसे प्रशंसा भी मिलेगी, यानी वो महिमा योग्य होते हैं, गायन योग्य होते हैं। ऐसी आत्माओं के संपर्क में जो भी आएंगे वो जरूर उनकी तारीफ करेंगे। उनसे मिलकर के जो उन्हें सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, जो गुणों की प्राप्ति होगी, जो भी प्राप्तियां आत्मा अनुभव करेंगी वो फिर उसका गायन करेंगी। तो संतुष्टता, प्रसन्नता और प्रशंसा तीनों का संबंध है। और फिर ऐसी आत्माएं सदा सफलता को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते हैं। तो बाबा ने जो हमें संगम युग पर ये संतुष्टता की प्रॉपर्टी दी है, जो इस समय ही हम अनुभव कर सकते हैं, संतुष्टता के द्वारा ही हम अतींद्रिय सुख का अनुभव वर्तमान समय कर सकते हैं, तो बाबा इसे कहता है इसे खूब अनुभव में लाओ। किसी भी छोटी छोटी बातों में जाकर, हद की इच्छाओं में जाकर के अपनी संतुष्टता को खोना नहीं है। सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्न हम रहें संगम युग पर, और आत्माओं को भी वो संतुष्टता प्रसन्नता का हम अनुभव कराएं। ओम शांति।